अशोक भया मृता पूर्ण सर्व खाना सकला छाड़िया तुआ चरण कमाले ओड़ी अच्छी आमीना था तव पद ताले तव पद ताले तव पद पद्मनाथ राखी बे अमारे आर राख करता नहीं ए भव संसारे आमी तव नित्य दासा जानी नो ए बार आमरा पलन भारा एक न तुम्हारा बड़ो दुख पाया छे स्वतंत्र जीवाने दुख दूर गे लो ओ पदवराणे जे पद लागिया रमा तपस्या करीला जे पद पाइया शिवा शिवत्व लोभीला ये पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला ये पद नारद मुनि हृदय धरीला से अभय पादा सिरे ते धरिया परम आनंदे नाची पद गुण गाया संसार विपद होते अवश्य उतार भक्ति विनोद ओ पद करिबे तुमार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद নিতাই গৌরা হরিবোল 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 নিতাই গৌর হরিবোল जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्सत् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत महाराज स्वामी शिल प्रभुपाद की स्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्सत् हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप श्री मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की सामवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा गौर हरि बोल। तो ये जो आपके सामने गीत है, गीत निकालिएगा दोबारा, ये भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। इसमें बोल रहे हैं एखोना बुझीनो प्रभु तुम्हारा चरणा, हे भगवान अब मैं समझ गया कि आपका जो चरण कमल है वो अशोक शोक का नाश करने वाला है, अभय भय का नाश करने वाला है और वास्तविक में यही अमृत है। पूर्ण सर्व खान ये सभी गुणों से युक्त है। सुबह हम लोग आते हैं ना, समस्त गुणगण धाम मंगल आरती में जो गाते हैं समस्त गुणगण धाम, तो भगवान में जो गुण हैं वो अविच्छिन्न हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। इसके पहले आप लोग देख चुके हैं लक्ष्मी माता का प्रसंग आया है, लक्ष्मी स्वयंवर का, जिसमें वे सब प्रकार के लोगों पर विचार करती हैं, प्रत्येक काल में जो उपस्थित हैं, प्रत्येक समय में जो भी उपस्थित हैं, हर जगह हर लोक के लोगों पर विचार करती हैं कि मैं किसका वरण करूं। अंत में उनको केवल और केवल मुकुंद ही अपने उपयुक्त दिखते हैं। तो भगवान में जो गुण हैं समस्त गुण मंडित हैं भगवान, और समस्त दोष विवर्जित हैं, किसी प्रकार के दोष नहीं हैं उनके। जो गुण हैं उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, निर्वृत्त गुण हैं, और उनके जो गुण हैं वह स्वतः सिद्ध हैं, किसी ने उनको दिया नहीं है। इस संसार में हम लोग देखते हैं जो हम लोगों के गुण होते हैं वो हम लोग हासिल करते हैं, ज्ञान हुआ, बल हुआ, पढ़ने जाते हैं स्कूल में। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं बोलना आता है, पहले माँ बोलना सिखाती है, फिर स्कूल में जाता है, इंग्लिश सीख जाता है, फिर चकमक चकमक बोलने लगता है, चलना भी सीखना पड़ता है, साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, तो सब कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान में जो भी गुण हैं सब स्वतः सिद्ध हैं। भगवान का ज्ञान हो, चाहे बल हो, चाहे ऐश्वर्य हो, सब अपने आप है। भगवान जब छोटे थे तो अपने ओठों से पूतना के स्तन को दबा दिया और इतनी बड़ी राक्षसी मर गई। तो उनका जो बल है स्वतः सिद्ध है, जितने भी ज्ञान है सब कुछ स्वतः सिद्ध है, भगवान के ऐसे गुण हैं। तो पूर्व सर्व खान, और जो भगवान के चरण कमल हैं वही अमृत हैं। अमृत मंथन समुद्र मंथन का प्रसंग चल रहा है, तो अमृत निकला इसमें से समुद्र से, लेकिन इस गाने में भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान आपका जो चरण कमल है वास्तविक में वही अमृत है। क्योंकि अमृत जो स्वर्ग में है उसे अभय की प्राप्ति नहीं होती है, खाली बड़ी जीवन की प्राप्ति होती है, सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। भगवद गीता में हम लोग देखते हैं उसमें लिखा है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो देवता लोग मर्त्य लोक में वापस आ जाते हैं। तो इसे सिद्ध होता है कि वहां का जो अमृत है वो वास्तविक में अमृत नहीं है, वो उनकी मृत्यु फिर भी होती है, लेकिन अगर कोई भगवत चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करता है तो वास्तविक में वो मृत्यु से परे हो जाता है, उसको भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए बारंबार श्रीमद् भागवत हो या गीता हो, भगवान की कथा को, भगवान के चरण कमल को अमृत बोला गया है, भगवान की कथा को अमृत बोला गया है। जैसे गोपी गीत में आता है तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रावण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। हे भगवान, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है। इसका जो सेवन करता है वो जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। कल्मश आप हम कल्मश का नाश करने वाली है। जो कवि लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, संत साधु हैं, वो इसी का गान करते हैं। और इस पे जो इसका पृथ्वी पे गान करते हैं, वास्तविक में वही सबसे बड़े दानी हैं। तो भगवान की कथा को अमृत बोला गया है, भगवान के नाम को अमृत बोला गया है। श्री रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में लिखते हैं, तुंडे तांडव नीरतिम तनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णाबुधिभ्य स्पृहां चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कितिं नो जाने जनिता कियद्भिरमृतये कृष्णेति वर्णद्वयी। तो इसमें राधा रानी बोलती हैं, मुझे नहीं पता ये जो दो शब्द कृष्ण कितने अमृत के सागरों को मथ कर बनाया गया है। यहाँ पर क्षीर सागर को मथ करके थोड़ा सा एक घड़ा अमृत निकला, लेकिन राधा रानी बोलती है पता नहीं कितने अमृत के सागरों को मथ कर ये दो कृष्ण नाम निकल रहा है। क्या खास बात है भाई इस कृष्ण नाम की? तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। जब तुंड ये मेरे मुंह में नाचता है, तुंडावली जब नाचता है तो ऐसा लगता है कि तुंडावली लब्धये, मेरा मन होता है कि मेरे कई कई मुख हो जाएं और प्रत्येक मुख से मैं इन भगवान के कृष्ण नाम ये मैं उच्चारण करूं। और क्या होता है, कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णाबुधिभ्य स्पृहां। जब ये कृष्ण नाम मेरे कानों में गिरता है तो यही लगता है कि करोड़ों करोड़ों कान हो जाएं, अर्बुदेभ्य 10,000 करोड़ों करोड़ों कान हो जाएं। पृथ्वी महाराज इसकी प्रार्थना भी करते हैं। और चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वे इंद्रियाणाम कृतिम। जब ये कृष्ण नाम मेरे कानों के रास्ते से हृदय में जाता है तो सारे इंद्रियों को शिथिल कर देता है, फिर मैं कुछ करने लायक नहीं रह जाती। तो पता नहीं ये कृष्ण नाम कितने सागर अमृत के सागरों को मथ कर बनाया गया है। वास्तव में कृष्ण की कथा ही अमृत है, कृष्ण नाम अमृत है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि आपके जो चरण कमल है वो अमृत है। मैं सब कुछ छोड़ के, सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, सब कुछ छोड़ कर मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप कृपा करके हे भगवान मेरा त्याग मत कीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। तव पाद पद्मनाथा राखी बे अमार। तो भगवान को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, वास्तव में जीव को भगवान से प्रयोजन है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नैवात्मना प्रभुरयम् निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदिशो करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य था मुखश्री। उसमें बोलते हैं कि हे भगवान, आपको वास्तविक में किसी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? निज लाभ पूर्ण, आप तो आत्माराम है, अपने लाभ में पूर्ण है, आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप कृपा करके करुणो वृणीते, जो मूर्ख व्यक्ति आपको कुछ देता है वो कहाँ से देगा, वो आपकी वस्तु दे रहा है, लेकिन आप कृपा करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? उसके ऊपर कृपा करने के लिए। उदाहरण दे रहे हैं, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य था मुखश्री। जैसे मान लीजिए हम कभी अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो अगर हमको शीशे के प्रतिबिंब को सजाना है तो हम क्या करेंगे? शीशे के ऊपर जो है मेकअप करने लगेंगे। ऐसा करते हैं क्या माता? नहीं करती है ना, अपने चेहरे का मेकअप करती है, ऑटोमेटिकली प्रतिबिंब में वो दिख जाता है ना। उसी तरह इसमें बोलते हैं कि जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो वास्तविक में भगवान को कुछ नहीं मिलता है, उसको ही प्राप्त होता है। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो भगवान को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। देखा जाए अगर अध्यात्म, अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए, रस की दृष्टि से देखा जाए तो है, उनको भक्तों की आवश्यकता है। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान आत्माराम है, उनको हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कृपा करके वो स्वीकार कर लेते हैं हमारी भलाई के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, बड़ो दुख पाई आज है स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र जीवन में मैंने बड़ा दुख पाया है, लेकिन हे भगवान अब मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपकी शरण में आने से मेरा सारा दुख चला गया है। जिन पदों को प्राप्त करने के लिए रमा देवी लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं, शिव जी अपना शिवत्व आपके चरण कमलों का ध्यान करने से प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा जी आपके चरण कमल को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए, जिन चरण कमलों का ध्यान नारद मुनि करते रहे, आज मैं उन चरण कमलों को अपने सर के ऊपर धारण करता हूँ। सही से अभय पद शिरे ते धुरिया और परम आनंदे नाचे पद गुण गाइया। पदों का गुण गाते हुए परानंद में नृत्य करता हूँ। अवश्य ही मेरी संसार की विपत्ति जो जन्म मृत्यु का चरण चक्कर फंसा हुआ है, आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवत शरणागति की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग फिर आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हमको चार श्लोक दिया गया है, 35, 36, 37 और 38। मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। गुरवे गौर चंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर दयांतरात्। नमाओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 35वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है कि अमृत निकल आया है, भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेके निकल आए हैं। तो जैसे ही अमृत का कलश लेके निकल आए, वैसे ही असुरों ने क्या किया, झपट्टा मार के छीन लिया। तो आज का यही श्लोक है, 35वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तम आलोक्य असुरा सर्वे, बोलिए तम, कलशम चामृताभृतम लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि, कलशं तरसाहरन् तम, नहीं अब हो गया ना, अब इसको जो अंतिम 38वां श्लोक हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ये खाली हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो तम अमृत आभृतम कलशं आलोक्य सर्वे असुरा, तो सर्वे असुरा सभी के सभी असुरगण, तम उस अमृत आभृतम कलशम, अमृत से भरे हुए कलश को आलोक्य देखकर, सर्व वस्तूनि लिप्सन्तः सभी वस्तुओं के प्रति लोभ करने वाले असुर लोग, क्या किया उन्होंने, कलशम कलश को तरसा झपट्टा मारकर वेग से आहरण छीन लिया। तो ये है असुरों का स्वभाव। असुरों का बिल्कुल भी विचार नहीं है कितने लोगों का परिश्रम लगा है, लेकिन वे लोग झपट्टा मार के भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन लिए कलश। तो जिसका जो स्वभाव होता है वो निकल ही आता है। तो असुरों का स्वभाव होता है कि सब कुछ मेरे लिए हो। तो उन्होंने क्या किया, भगवान धन्वंतरी के हाथ से कलश को छीन लिया। भगवान धन्वंतरी भी एकदम भोला भाला बन के आ रहे हैं, जैसे उनको पता ही नहीं कि माहौल एकदम गर्म है। एकदम सीधा साधा बन के आए और इधर से छीन लिया गया इन लोगों ने। जब छीन लिया तब क्या हुआ, नियमाने असुरै तस्मिन, बोलिए कलशे अमृत भाजने विषण्ण मनसो देवा हरिम शरणमाययुः। तो जब अमृत भाजने कलशे तस्मिन असुरै नियमाने, तो असुरै असुरों के द्वारा, तस्मिन उस अमृत भाजने कलशे अमृत से भरे हुए कलश को नियमाने ले जाने पर, जब असुर लोग उस अमृत के कलश को छीन कर ले जाने लगे, तब क्या हुआ, देवा विषण्ण मनसा, सारे सारे देवता लोग विषण्ण मनसा दुखी हो गए। उनका मुंह लटक गया, मुंह एकदम पीला पड़ गया, शरीर की जितनी भी कांति है वो सब नष्ट हो गई। दो कारण थे, एक तो इतना मेहनत किया था, परिश्रम किया था अमृत प्राप्त करने के लिए, और अंत में कोई दूसरा आके इसको ले जा रहा है, तो ये दुख हुआ। दूसरा एक और दुख ये हुआ कि अमृत ले गया तो कौन ले गया, असुर ले गए। असुर पहले से इतने बलवान थे, अब अमृत पी लेंगे तो और भी बलवान हो जाएंगे, तो इसलिए और उनको भय हो गया कि अब क्या होगा। एक तो रहली भाल, दूजे पौली कुदाल, कहावत है। एक तो भालू था, भालू वैसे ही बहुत लंबा गहरा गहरा गड्ढा खोदता है, ऊपर से उसको कुदाल मिल जाए तब तो कहने का ही क्या। तो एक तो पहले से इतने बलवान थे, ऊपर से अमृत मिल गया, तो इसलिए भी विषण मनसा। खैर वो घबराए नहीं, हरि शरणम आयहु, भगवान श्री हरि की उन्होंने शरण ग्रहण की। हरि, हरि का अर्थ क्या होता है, जो सारी संपत्ति सारी विपदाओं को हर ले। चैतन्य चैतन्यमृत में लिखे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, बहुत सारे अर्थ हैं लेकिन दो मुख्यतम हैं। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, सब प्रकार की अमंगल को बुरी वासनाओं को भगवान हर लेते हैं और अपना प्रेम देकर अपने माधुर्य से अपने लावण्य से अपने वैदग्ध से भक्तों के चित्त को भी चुरा लेते हैं, इसलिए उनको हरि, जो हर ले वो हरि, जो समस्याओं को हर ले भक्तों के चित्त को हर ले वो हरि है। तो हरि शब्द का ही यहाँ प्रयोजन है कि अवश्य ही वो देवताओं की समस्याओं को अवश्य हर लेंगे, इसलिए हरि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देवता लोग हरिम शरणम आययुः, भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण किए। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसको चाहिए कोई भी विपत्ति आए तो भगवान की शरण ग्रहण करें, इसी में बुद्धिमत्ता है। भगवद्गीता में हम देखते हैं चार प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है सातवें अध्याय में, जिन्हों जो लोग भगवान की शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभा। बाद में उनके विषय में बोलते हैं भगवान उदारा सर्व एवैते, ये सारे के सारे लोग उदार हैं। उदार हैं, क्यों उदार हैं, क्योंकि उन्होंने संकट के क्षण में या जो कुछ भी उनको आवश्यकता है, पैसा चाहिए धन चाहिए, वे भगवान की शरण में आए हैं। ऐसा देखा जाता है कि जरूरी नहीं लोग भगवान की शरण में आए, कोई समस्या आती है तो लोग भगवान को गाली भी देने लगते हैं, अरे विधाता तूने क्या किया। नहीं, हो सकता है लोग गलत आदत में पड़ जाएं, ड्रग्स लेने लगें, शराब पीने लगें, लेकिन अगर कोई समस्या के समय भगवान की शरण में आ रहा है तो वो उदार है, बुद्धिमानी इसी में है। इसी से भागवत में लिखा गया है अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परः। चाहे कोई अकाम हो चाहे सर्व काम हो, सर्व काम मतलब दुनिया की सारी इच्छाएं हैं, पैसा चाहिए, अच्छी शादी होने चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, तो सारे की सारी इच्छाएं हैं, चाहे मोक्ष काम, मोक्ष काम इस जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है, और चाहे अकाम, ना तो इस संसार की वस्तुओं की कामना है ना तो मोक्ष की कामना है, केवल भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान की सेवा करने को मिले, इसको बोलते हैं अकाम। तो कुछ भी हो उसको क्या करना चाहिए, भगवान परम पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए, इसी में बुद्धिमत्ता है। तो इसी से देवता देखिए बुद्धिमान है। अंत में समुद्र मंथन की लीला का उपसंहार करते हुए ये अंतर बताते सुखदेव गोस्वामी कि सब कुछ एक सा था, एक सी परिस्थिति थी, एक सा देश था, एक सा काल था, एक सा प्रयोजन भी था, एक सा लोगों ने व्यवसाय भी किया, देवताओं ने असुरों ने, लेकिन जो रिजल्ट हुआ अंत में वो अंतर हो गया। देवताओं को तो अमृत मिला लेकिन असुरों को नहीं मिला, क्यों, क्योंकि देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण की। यत्पाद पंकज रजह श्रेणात्, भगवान के चरण कमलों की आश्रय ग्रहण किया, इसलिए अंतर हो गया। फिर क्या हुआ, इति तद्दैन्यम आलोक्य, बोलिए भगवान भृत्य काम कृत माखिद्यत मिथोर्थम वह साधयिष्ये स्वमायया। तो इति इस प्रकार, तत उस दैन्यम आलोक्य, देवताओं की दैन्यता को देखकर, तो भगवान ने देखा कि जो देवता लोग हैं वो दीन हो रहे हैं, माने मन ही मन बोल रहे हैं हमने क्या गलती की, हमने तो वही किया जो आप बोले, और अभी देखिए क्या हो रहा है, असुर लोग सारा अमृत लेके चले जा रहे हैं, अब क्या होगा। तो ये ऊपर से नहीं बोल रहे थे, मन में मानो बोल रहे थे और उनके मनोभाव चेहरे पर आ रहे थे, विषण मनसः, पिछले श्लोक में आ चुका है। तो जब भगवान ने उनकी दीनता को देखा तो भगवान कैसे हैं, भगवान भृत्य काम कृत, भृत्य काम कृत, जो सेवकों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं भगवान। उन्होंने क्या की, क्या कहा, मां खिद्यता, खेद मत करो, डरो मत, रो मत, इस तरीके से। वह अर्थम साधयिष्य स्वमायया, स्वमायया अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वह तुम लोगों के अर्थम अर्थ को साधयिष्य, उसको अवश्य मैं पूरा करूंगा। कैसे पूरा करूंगा, मिथः, इन असुरों के बीच में आपस में फूट डाल के, इनमें झगड़ा डाल करके, कैसे, स्वमायया अपनी शक्ति के द्वारा मैं इन असुरों में फूट डाल दूंगा और तुम्हारे अर्थ को, वह अर्थम तुम लोगों के अर्थ को, तुम्हारे प्रयोजन को अवश्य साधयिष्य, इसको अवश्य पूर्ण करूंगा। इसलिए मा खिद्यता, खेद मत करो। श्रीमद् भागवत के शब्दों में हमको अपनी चेतना को और रिफाइन करने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं जिसपे मैं आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इति तत् दैन्यम आलोक्य, एक तो दैन्य शब्द है, दीनता, और दूसरा है भगवान भृत्य काम कृत, भगवान अपने सेवकों की इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। भृत्य काम कृत, भगवान कृपा से परिपूर्ण है। तो एक तो भक्त की दीनता और दूसरी चीज है भगवान की कृपालुता। तो हमको चाहिए कि अपने जीवन में, विशेषकर हम लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमको चाहिए कि इन दो चीजों पे हमको पूर्ण विश्वास हो, एक तो अपनी दीनता के ऊपर और दूसरा भगवान की कृपालुता के ऊपर। दीनता का अर्थ क्या है, दीनता का अर्थ यह है कि हमेशा अपने आप को विनम्र समझना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि जो भक्त होता है अपने आप को तृणादपि सुनीचेना, तृण से भी नीच समझता है, तरोरपि सहिष्णुना, तरो मतलब पेड़ से भी वो सहिष्णु होता है, किसी से मान की अपेक्षा नहीं करता है, सबको मान देता है। वास्तव में ये वैष्णवों का आभूषण है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्लोक को अपने गले में बांध लो ऐसे बोले, तो ये वैष्णवों का आभूषण है दीनता। भक्ति महारानी का यही वाहन है, जहां पर दीनता होगी भक्ति महारानी स्वाभाविक आ जाती है। तो अपनी दीनता पर विश्वास होना चाहिए भक्तों को। इसका क्या अर्थ होता है, अपनी दीनता पर विश्वास होना, अपनी दीनता पर विश्वास होना, इसका अर्थ यह है कि अपनी स्थिति को हमेशा समझते रहना। हमको अपनी दीनता पर विश्वास तो होता है, लेकिन कब तक, जब तक कोई पूछता नहीं है भक्ति का ऐसा स्वभाव है। रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति के 6 फायदे बताते हैं। उसमें बोलते हैं, क्लेश अग्नि शुभता मोक्ष लघुता कृष्ण सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा। तो उसमें उत्तरोत्तर जो दो दो गुण हैं वो साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति में उत्पन्न होते हैं। क्लेश अग्नि और शुभदा साधन भक्ति में ही आते हैं, और मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा ये भाव भक्ति में आते हैं, सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा ये प्रेमा भक्ति में आते हैं। सबके बारे में चर्चा करने का तो अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं इसमें से एक उठाऊंगा, क्लेश अग्नि और शुभदा। शुभदा का अर्थ है कि हमारे जीवन में जब हम भक्ति करने लगते हैं, साधन स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के शुभ गुण आने लगते हैं। ये भक्ति की कृपा होती है, भक्ति महारानी की कृपा होती है, कि भक्ति की कृपा से हमारे जीवन में शुभ दैवी गुणों का प्रवेश होता है। लोग आगे पीछे डोलने लगते हैं, प्रभु जी कहके हाथ डोलने लगते हैं। तो ये भक्ति का स्वभाव है, पैसा आता है, धनम जनम ये सब आता है, भक्ति का ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन जो साधक होता है वो अपनी दीनता पर विश्वास रखता है, वो समझता है कि ये जो गुण आ रहे हैं ये भक्ति की कृपा से आ रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब भी कोई तारीफ आती है, प्रशंसा आती है, वो अपने पास रखता नहीं है, वो गुरु को सौंप देता है, है ना, वो गुरु परंपरा को सौंप देता है, वो भगवान के ऊपर सौंप देता है। हम लोग छोटे में एक गेम खेलते थे, हॉट पोटैटो गेम, उसमें गरम गरम आलू रहता है, बच्चे लोग सब बैठ जाते हैं सर्कल में और हाथ में आलू लेते हैं। तो उसका नियम होता है कि अपने हाथ में आलू पकड़ना नहीं है, अगर पकड़े तो जल गए क्योंकि गर्म आलू रहता है। तो जैसे ही हाथ में आया वैसे ही दूसरे की ओर फेंक देते हैं, वो उसके हाथ में आया तो दूसरे की ओर फेंक देते हैं, उस दूसरे के हाथ में आया तो उसके ऊपर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से हॉट पोटैटो गेम हमको जो हमारे सम्मान आए उसके साथ भी यही गेम खेलना चाहिए, जैसे ही कोई सम्मान आए गुरु गौरांग फेंक देना चाहिए। तो अपनी दीनता पर विश्वास रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो गुण आ रहे हैं ये भक्ति की कृपा से आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवतीय किंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिर्। कि जिसके घर में, जिसके हृदय में भगवान के प्रति निष्किंचन भक्ति होती है, अकिंचना भक्ति होती है, उसके हृदय में सारे के सारे देवता अपने दैवी गुणों के साथ प्रवेश कर जाते हैं, और उनके प्रवेश करने के कारण उसके हृदय में, उसके शरीर में दैवी गुणों का समावेश हो जाता है। लेकिन जो अभक्त होते हैं उनके गुणों के बारे में क्या बोला जाए, तो खाली मनोरथ कर रहे हैं, उनके अंदर कोई शुभ गुण नहीं है। तो भक्ति के प्रभाव से भक्तों के जीवन में शुभ गुण आते हैं, लेकिन अगर हम उन शुभ गुणों को आधार बनाकर अहंकार करने लगते हैं, बोलते हैं कि हम भी कुछ हैं, तो फिर ये अपने पतन का रास्ता तय कर रहे हैं। सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए भक्ति में, तो दीन रहना चाहिए, दैन्य रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी स्थिति है ये कृपा के कारण है, भगवान की कृपा है, भक्ति कृपा है, वैष्णव की कृपा है, तभी हम इस मार्ग पर चल पा रहे हैं। यदि उनकी कृपा नहीं होगी तो मिनट दूसरा तब होगा जब हम नाली में गिरे मिलेंगे, समझ लेना चाहिए, है ना। ये मन बहुत बोलता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, लेकिन मन एक समय में तो सिद्ध बता देगा और दूसरे समय में अपने आप को गिद्ध बना देगा, ऐसा है। गिद्ध क्या करता है, उड़ता इतना ऊंचे है लेकिन उसकी दृष्टि किस पे रहती है, मांस के ऊपर, मांस कहाँ मिलेगा। उसी तरह हो सकता है हम कहलाएंगे प्रभु जी, हम कहलाएंगे भक्त, पहनेंगे धोती कुर्ता, बांधेंगे कंठी, लेकिन करेंगे दुराचार, करेंगे अनाचार, करेंगे भ्रष्टाचार। इसलिए बहुत विनम्र रहना चाहिए जीवन में, दैन्य रहना चाहिए, हमको सोचना चाहिए यदि प्रभुपाद जी की कृपा नहीं होती, प्रभुपाद जी के पार्षद जीवन में नहीं आते तो ये जीवन कहाँ जा रहा था, नरक के रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। अक्रूर जी बोलते हैं, हृय माड़ा काल नद्या क्वचित तरति कश्चना, जैसे नदी में बहुत बहुत लट्ठे चलते रहते हैं, बहते रहते हैं, इन कभी कभी हवा चलती है तो वो लट्ठे साइड में लग जाते हैं, किनारे पर लग जाते हैं। उसी तरह हम भी अपने कर्मों के प्रवाह से नरक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा हुई, भक्तों की कृपा हुई कि आज हम इस भक्ति का अनुसरण कर पा रहे हैं, भक्ति का अनुशीलन कर पा रहे हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और दैन्य रहना चाहिए। तो अपनी दीनता में विश्वास, दूसरी चीज क्या रहनी चाहिए, भगवान की कृपालुता में विश्वास रहनी चाहिए। भगवान भृत्य काम कृत, भगवान कृपा अवश्य करेंगे, ये इस बात पे दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। भगवान कृपालु हैं, भगवान कृपा अवश्य करेंगे। हमको भी भगवान की कृपा पर विश्वास होता है, लेकिन हमारी कृपा का मापदंड क्या है, यदि कुछ हमारे अनुकूल हुआ तो भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन कुछ प्रतिकूल हुआ तो भगवान की कृपा नहीं। मैं इस समय अपने भक्तों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बेस के लिए कुछ फ्लैट ढूंढ रहा था, तो उधर एक भक्त मिले जो कि ब्रोकर का काम करते हैं, दलाली का, और वो जो है हम लोग को लेके गए चैतन्य विहार। तो रास्ते में जब लेके जा रहे थे तो बता रहे थे, प्रभु जी वृंदावन धाम में बड़ी कृपा है। बोला अच्छा क्या कृपा है। बोले प्रभु जी वृंदावन धाम में इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि कोई भी यहाँ पर आकर आपको कितना भी रुपया देकर चला जाएगा। तो अपनी बात बता रहे थे कि ट्रेन में जा रहे थे और एक टाटा का कोई इंजीनियर था, वो बोला कि हमको धाम का दर्शन करा दो, तो करा दिए, तो उनको 50,000 रुपये दिए, तो बोले थे बड़ी कृपा है। तो ये हमारी स्थिति है, हम केवल अनुकूलता में भगवान की कृपा का अवलोकन करते हैं। अगर बहुत अच्छा जो है बैंक बैलेंस है, भगवान की बड़ी कृपा है। बिजनेस अच्छा चल रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा जॉब लग गया, भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छी तरीके से जीवन में सेटल हो गए तो भगवान की बड़ी कृपा है। बेटी की शादी हो गई, भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन अगर कहीं प्रतिकूल हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो ये भगवान तुमने क्या किया, मैं तो तुम्हारा इतना भजन करता हूँ, ये तुमने बीमारी क्यों दे दिया। इस तरीके से भगवान को कोसने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक परिस्थिति में भक्त को कृपा का अवलोकन करना चाहिए। कृपा का मतलब ये नहीं कि हमेशा जीवन में अनुकूलता ही रहेगी, नहीं, प्रतिकूलता भी आएगी, लेकिन भक्त वो जो भगवान की कृपा का अवलोकन करे। भगवान हमारे शत्रु नहीं है। गीता में भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्दम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, सर्वलोक महेश्वरम सर्व समर्थ हैं, और सुहृदम सर्वभूतानाम सभी जीवों के सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ होता है अकारण हितैषी, बिना किसी कारण के भगवान हित करते हैं। भगवान चाह कर भी किसी जीव का हित कर ही नहीं सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माता पिता रहते हैं, एक माँ अपने छोटे बच्चे को कभी अहित कर ही नहीं सकती है, उसी प्रकार अनंत माओं का दुलार लिए हुए भगवान कभी भी हमारा अहित नहीं कर सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है। और वे सर्व समर्थ हैं, सर्वलोक महेश्वरम, ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि बच्चा छोटा होता है, उसको बुखार हो जाता है तो माँ बहुत परेशान होती है, सुहृद होती है, लेकिन करे तो क्या करे, दवाई देती है लेकिन बुखार तो खत्म कर नहीं सकती है। लेकिन भगवान सर्व समर्थ हैं। यदि हमारे जीवन में विपत्तियां आ रही हैं, प्रतिकूलताएं आ रही हैं और वो भगवान की इच्छा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। क्यों? सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान हमारे अकारण हितैषी हैं। तो कोई ना कोई विधान जरूर है जो भगवान हमारे जीवन में समस्याएं भेज रहे हैं। भगवान भक्ति को निखारने के लिए समस्याएं भेजते हैं, प्रतिकूलताएं भेजते हैं। जैसे सोना आग में जलता है तो और चमकने लगता है, वैसे जब भक्तों के जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो और चमकने लगता है, उसकी भक्ति और निखर के बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रतिकूलताएं भेजते हैं। लेकिन हमारा क्या दृष्टिकोण है कि भगवान, हमको भगवान की शक्ति पर तो पूर्ण विश्वास है कि भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन ये नहीं विश्वास है कि भगवान हमारा भला करेंगे ही करेंगे, इस बात पर विश्वास नहीं रहता है। हमारा कहना है भगवान शक्ति तुम्हारी, बुद्धि हमारी, तुम अपनी शक्ति लगाओ और हम जो बोले वो करो, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी कृपा, भगवान की कृपा का अवलोकन करना चाहिए प्रत्येक परिस्थिति में। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमान भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर् विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। इस प्रकार जो जीता है उसके लिए मुक्ति बपौती में रखी है, दाय भाग। बपौती मतलब इनहेरिटेंस, जो हमको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पिता की प्रॉपर्टी बच्चे को बपौती में मिल जाती है, इनहेरिटेंस में मिल जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति तो बपौती में मिली है। कैसे व्यक्ति के लिए? जो व्यक्ति तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाना, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा को ही देखता है और यही बोलता है कि जो भी मेरे जीवन में समस्याएं आ रही हैं वो मेरा ही पकाया हुआ है। और फिर शरीर से, मन से, वाणी से, हर प्रकार से भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार जो जीता है उसके लिए मुक्ति बपौती में रखी हुई है। तो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अवलोकन करना चाहिए। जिसमें भगवान राजी उसमें हम राजी। हम लोग छोटे थे तो एक प्रार्थना करते थे, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो उसमें राजी रहना जिसमें भगवान की राजी है। भगवान राजी तो हम राजी। यदि तुमको अच्छा लगता है प्रतिकूलता देना तो मेरे जीवन में अभी प्रतिकूलता दे दो। यदि तुमको अच्छा लगता है मुझे रोडपति बना देना, करोड़पति से रोडपति बना देना, तो अभी मुझे कंगाल कर दो। ये भावना रहती है भक्त की। वास्तव में यही है गोपी भाव, यही है मंजरी भाव, यही है तत्सुख सुखित्वम। बहुत बहुत हम लोग बोलते हैं इस विषय में, लेकिन इसका एक संक्षेप में बोला जाए तो भगवान की राजी में राजी होना। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बोलते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव न प्रह। राधा भाव में बोल रहे हैं कि अरे ओ लंपट, बड़े प्रेम का संबोधन है, अरे ओ लंपट तुम चाहो मेरे साथ कुछ भी करो, चाहे तुम मेरा आलिंगन कर लो और चाहे मुझे तुम ठुकरा दो, लेकिन तुम ही मेरे प्राणनाथ न होगे। तो किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा का अवलोकन करना, जब हम भगवान की कृपा का अवलोकन करते हैं और अपनी दीनता में विश्वास रखते हैं तो अवश्य हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे ही भगवान का संकल्प हुआ, भगवान ने बोला कि मैं अपनी माया से इन लोगों में फूट डाल करके तुम्हारे अर्थ को पूरा करूंगा, तब क्या हुआ? आपस में वो लोग झगड़ने लगे। क्या हुआ? मिथः कलि अभूतेषाम। अच्छा श्लोक नहीं है, नहीं चलिए ठीक है, मैं ही पढ़ देता हूँ। मिथः कलि अभूतेषाम तदर्थे तर्ष चेतसाम अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभो। मिथः कलि अभूतेषाम, तेषाम उन लोगों के बीच में कैसे थे वो लोग? तर्ष चेतसाम, अमृत लोलुप थे उनके बीच में। मिथः कलि अभूत, आपस में ही कलह उत्पन्न हो गई, झगड़ा उत्पन्न हो गया। किस लिए? तद अर्थे अमृत के लिए। और वो क्या बोलने लगे? अहम पूर्वम, मैं पहले, नत्वम नत्वम, तुम नहीं, इति प्रभो। हे परीक्षित महाराज, वो इस प्रकार बोलने लगे। तो ये इसका पढ़ लेते हैं जल्दी से। मिथा अर्थात परस्पर, कलि असहमति तथा कलह अभूत हुआ तेषाम उन सब का, तद अर्थे अमृत के लिए। तर्श चेतसाम श्री विष्णु की माया से मोहग्रस्त चित्त, अहम मैं पूर्वम पहले, न नहीं त्वम तुम, इति इस प्रकार प्रभो हे राजन। हे राजन, जब असुरों के बीच झगड़ा उठ खड़ा हो गया कि सबसे पहले कौन अमृत ले, उनमें से हर एक यही कहने लगा, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, पहले मैं, तुम नहीं। अहम पूर्वम। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, यह असुरों का लक्षण है। अभक्त की पहली चिंता यही रहती है कि सर्वप्रथम अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए, जबकि भक्त की सर्वोपरि चिंता श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। अभक्त तथा भक्त में यही अंतर है। क्योंकि इस भौतिक जगत में अधिकांश लोग अभक्त हैं, अतः वे निरंतर स्पर्धा करते हैं, असहमत होते हैं एवं लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करके तुष्ट होना चाहता है। अतएव जब तक ऐसे असुर कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते और श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मानव समाज या किसी भी समाज में भले ही वह देवताओं का क्यों न हो, शांति नहीं हो सकती। यही भोक्ता राम यज्ञ तपसाम वाला श्लोक का अनुवाद कर रहे प्रभुपाद जी। किंतु भक्त तथा देवता सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, अतएव श्री भगवान उनकी मनोकामनाओं को तुष्ट करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। असुरगण अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए लड़ते झगड़ते हैं, किंतु भक्तगण भक्ति में लगे रहकर श्री भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करने में लगे रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस बात की ओर सतर्क रहना होगा, तभी उनके इस आंदोलन का प्रचार कार्य सफल होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूरे तात्पर्य में देखिए तो दो तरह के विचारों को प्रस्तुत किया गया है, एक है आसुरी विचार और एक है दैवी विचार। आसुरी विचार क्या है कि सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरा है, सबका भोग मैं करूंगा, है ना, कर्ता हम जो बोलते हैं गीता में भगवान, अहम भोगी ईश्वरो हम, अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं भोगता हूँ, भगवान बोलते हैं भोगता मैं हूँ, वो लोग बोलते हैं कि मैं भोगी मैं भोगता हूँ। तो ये आसुरी विचार है। दैवी विचार क्या है कि भगवान की सेवा के लिए सब कुछ लगना चाहिए। तो ये दो तरह के विचार हैं। आप देखिए इसी प्रकार का एक श्लोक भागवत के दसम स्कंद में भी आता है, अहम पूर्वम उसमें भी आता है। वो भागवत के दसम स्कंद के 12वें अध्याय का श्लोक है, यदि दूरम गत कृष्ण वन सोवेक्षणाय तम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। यदि भगवान कृष्ण कभी वन की शोभा देखने के लिए दूर चले जाते थे तो सब जितने भी उनके दोस्त थे, सखा थे, वो पीछे से दौड़ते थे उनकी तरफ और ये बोलते थे अहम पूर्वम मैं पहले छूंगा कृष्ण को, और फिर कृष्ण का आलिंगन करके रे मिरे अत्यंत आनंद का अनुभव करते थे। आप देखिए शब्द एक ही है, है ना, कि अहम पूर्वम और वहां पे भी अहम पूर्वम तो देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन भाव में बहुत अंतर है। एक काम है तो दूसरा प्रेम है, बहुत अंतर है। चैतन्य चरितामृत में इसका अंतर स्पष्ट दिया है कि काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, काम तो अंधेरा तम है और प्रेम निर्मल भास्कर है, सूर्य के समान है। यहाँ पर इन लोगों में लड़ाई हो गई बोलने की, मैं पहले पीऊंगा और इन लोग में कोई भी भेद नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा था कौन बेटा है, कौन पुत्र है, कौन पिता है, कौन चाचा है, काका है, आपस में ही लड़ने लगे। ये लोग बोलने लगे मैं पहले पीऊंगा। जो बलवान थे वो कमजोरों से छीन ले रहे थे अमृत और बोल रहे थे कि अरे हट, तूने कौन सी मेहनत की, सारा समुद्र मंथन तो मैंने किया, मैं खींच रहा था, तू खाली साइड में खड़ा था, बाप रे बाप मर गया है वासुकी की आग झेलते झेलते और तुम आए अमृत पीने, ला इधर, इस तरह से छीन लेते थे। जो उच्च जाति के थे वो बोलते थे अरे शूद्र कहीं का, चमार कहीं का, तू अमृत पिएगा, ला इधर, इस तरीके से छीन लेते थे। तो आपस में कलह हो गया, लड़ाई होने लगी। जो बूढ़ा था वो बोलता था कि बेटा मेरे को थोड़ा सा अमृत दे दो, देखो मेरी नसें जो है जकड़ रही हैं, मैं थोड़ा अमृत पी लूंगा तो जवान हो जाऊंगा, फिर से संसार का भोग कर पाऊंगा। तो बेटा बोलता है कि अरे तू बुढ़ाऊ, देख नहीं रहा है एक टांग जो है कब्र में लटकी हुई है और आता है अमृत पीने के लिए, ला इधर। तो इस तरीके से कोई भेद ही नहीं रहा, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। और यही नहीं बोल रहे कि हम पूर्वम, ये भी बोल रहे नत्तम, तुम नहीं। उनका तो यही मानना था कि एक घड़ा है अमृत, कोई पीने पे आ गया तो एक ही आदमी पी के चट कर जाएगा, अभी इसमें बचेगा क्या, तो मैं पहले पी लेता हूँ, बाद में कुछ बचेगा नहीं ये तो श्योर है, इसलिए पहले मैं पी लूँ। तो ये है असुरों का भाव और ये है काम, जबकि वो जो दसम स्कंद का भी श्लोक हमने पढ़ा वो है प्रेम, वो भगवान की तुष्टि के लिए है। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछे तारे बोले काम, और कृष्ण इंद्रिया प्रीति बोले धरे प्रेम नाम। तो ये काम और प्रेम में बेसिक अंतर है। अपने लिए जो होता है वो काम और भगवान के लिए जो है वो है प्रेम। तो आसुरिक विचार क्या है कि अहम पूर्वम, मैं पहले भोग करूंगा, ये इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है असत अभिनिवेश, असत में अभिनिवेश। ये जो संसार है वास्तव में असत है। असत का अर्थ है ये जैसा हमको दिख रहा है ऐसे रहेगा नहीं, ये परिवर्तन होगा। अभी जो हमारा परिवार है, अभी जो हमारे पास धन है वो रहेगा नहीं, उसका वियोग होना अवश्यंभावी है। और वियोग होगा और हम उसको पकड़ना चाहते हैं, इसलिए व्यक्ति क्या होता है, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि समुद्विग्न धियाम, हमेशा चिंता में रहता है। मान लीजिए आप घर में रह रहे हैं, कोई आपको उठा के बाहर रोड पर पटक दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही ये हमको इस शरीर से बाहर निकाला जाएगा, वियोग अवश्यम भावी है। अभी जो हमारे पास धन है, हमारे पास जो परिवार है, उसके साथ वियोग होगा ही होगा। लेकिन ये मूढ़ता है, ऐसा लगता है कि अभी जो हमारा घर परिवार है, अभी जो हमारे पास पैसा है, यही परमानेंट रहेगा। लेकिन नहीं, संस्कृत के एक कवि ने बोला है कि गंगा जी में इतने बालू नहीं होंगे जितना मनुष्य के रिश्तेदार हो चुके हैं। वास्तव में सत्य है, कितने कितने जन्म हम लोग ग्रहण कर चुके हैं, कितनी कितनी योनियों में आ चुके हैं, प्रत्येक योनि में कोई ना कोई शरीर मिला, प्रत्येक योनि में कोई ना कोई रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, कुछ ना कुछ घर रहा होगा, लेकिन उन सब का भी बिल्कुल याद ही नहीं है। अभी हम देख सकते हैं कि पिछले जीवन का कुछ याद है क्या? नहीं। पिछले जीवन का लड़का हो सकता है हमारे सामने आ जाए और हम लोग उसको भगा दें, ऐसा भी हो सकता है। तो जब तक संबंध है, जब तक ये शरीर में है, तभी तक ममता है। यावत एव ही संबंध ममत्वम तावत एव ही। हमारे गांव की घटना है, महाराज जी बताते हैं, एक्चुअली महाराज जी की गांव की है। तो उसमें बताते हैं कि एक बार एक गांव बैल था, एक घर में बैल था और उन्होंने बैल बेच दिया। बैल बेच दिया और बैलों का जनरली स्वभाव होता है कि गाय जब चर के आती हैं तो अपने घर को पहचानते हैं, वो अपने उसी में खिड़क में जाते हैं जहाँ काफ़ी समय से बंधे हुए थे, लेकिन अब तो दूसरे के वहाँ बंधे थे। लेकिन वो वापस अपने पुराने घर, पुराने मालिक के वहाँ आ गया और वहाँ पे नांद में भूसा लगा हुआ था और खाने लगा। तो जो पुराना मालिक था वो बोलता है फलानुआ को, बैल को मारो मारो। तो बस संबंध खत्म हो गया, बेच दिया तो ममता भी चली गई। उसी तरह जब ये शरीर चला जाएगा, संबंध खत्म हो जाएगा, तो ममता भी नष्ट हो जाएगी। अभी हम कह रहे हैं कि हमारे अपने हैं, ये मेरा देह है, लेकिन सब नष्ट होना अवश्यंभावी है। धन नष्ट हो जाएगा, परिवार वालों से वियोग हो जाएगा। क्षमा करिएगा मेरी भाषा थोड़ी कठोर हो रही है, लेकिन ये सिद्धांत की बात है। वास्तव में वियोग अवश्यंभावी है, या तो वो लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन उसको हम लोग पकड़ के बैठे हुए हैं, इसीलिए क्या होता है, समुद्विग्न नदियां बहुत चिंता में रहते हैं। चिंताम अपरिमेयांश प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। तो ये आसुरी विचार है कि इसी में ये काम भोग के लिए ही संसार बना हुआ है, इसलिए चिंता बनी रहती है पूरे जीवन के अंत तक। लेकिन जो भक्त है वो इसको समझता है कि नहीं, ये जो जीवन मिला है भगवान प्रति भक्ति करने के लिए मिला है। ठीक है, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को संभालें, इनके लिए जो भी आवश्यक है कर्तव्य वो करें, लेकिन इसमें पूरा पूरा अभिनिवेश ना हो जाए। अभिनिवेश का मतलब होता है पूरा पूरा डूब जाना, अभिनिवेश वेश प्रवेश करने के अर्थ में होता है। तो पूरा पूरा डूब जाना, उसी के विषय में चिंता करते रहना कि कब जो है मैं अपने बेटे को बड़ा करूँगा, कब इसका विवाह करूँगा, कब इसको जो है बाहर भेजूंगा पढ़ाई करने के लिए। तो इसको बोलते हैं अभिनिवेश। इस बात पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हमारा कुछ भागवत धर्म भी है, इस बात के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, इसको बोलते हैं असत अभिनिवेश। लेकिन जो भक्त होता है वो समझता है कि नहीं, ये जीवन जो है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, जो भी कार्य है आवश्यक वो मैं करूँगा, लेकिन ममता जो है वो भगवान से करूँगा, इस प्रकार का उसको अभिनिवेश, इस प्रकार उसको उसको विश्वास रहता है। तो दो विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इससे हम बदलाव कैसे करें? आसुरिक विचार यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है, ऐसा नहीं कि असुर के कुछ सींग होते हैं, दांत निकले रहते हैं। कभी कभी हो सकता है हमारे अंदर भी असुर विचार हो कि हम पहले भोग करेंगे, हमको चाहिए, हम करेंगे। लेकिन इससे परिवर्तन करना होगा भक्तों के विचार में। इसी का नाम है साधना, इसी का नाम है भक्ति। जब हम भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, तो यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सारी चेष्टाएँ भगवत प्रीत्यर्थम हो, भगवान की प्रीति के लिए हो। साधक जब साधन करता है तो वो उसको बुद्धि से तो पूरा समझ में आता है कि यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं होते, ये जो संसार के भोग हैं दुख प्रदान करने वाले हैं, लेकिन मन नहीं मानता है। नहीं, मन नहीं मानता है। कई बार भक्ति विरोधी भोग आते हैं तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो ये दिक्कत होती है साधक के साथ। उसको करना क्या चाहिए, जो पहले दो चीजें बताई गई थी, अपनी दैन्यता पर विश्वास करनी चाहिए, दूसरी चीज भगवान की कृपा पर विश्वास करना चाहिए। एक काम और उसको करना चाहिए कि उसको निरंतर भक्ति के साधन में लगे रहना चाहिए, कृपा के बल पे प्रमाद नहीं पाल लेना चाहिए कि जब भगवान की इच्छा होगा तब होगा। कई लोग बोलते हैं, उनसे बोलो जब करो, अरे भगवान चाहेंगे तब ना जब करेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रमाद, नहीं साधन में लगे रहना है। हम अपने साधन से भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन हम जब साधन करेंगे तो भगवान की कृपा को आकृष्ट करता है। दामोदर लीला में इसमें एक श्लोक आता है, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत सुबंधना। जब भगवान ने देखा, कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ पूरा परसीने से लथपथ हो गई, इतना परिश्रम कर रही है, तो अपने बंधन में, माँ के बंधन में आ गए। तो जब हम मेहनत करते हैं तो ये कृपा को अट्रैक्ट करता है। इसका एक प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं, 4 मिनट बचा है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक गौरैया थी और उसके अंडे थे, और वो अंडे जो है सागर में पानी में चले गए। अब गौरैया बोली सागर से कि अरे सागर मेरा अंडे वापस कर। सागर बोली अरे हट भाग इधर से, कुछ उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो गौरैया ने ठाना कि मैं जो है इस सागर को सुखा दूंगी, इसकी ऐसी मजाल कि मेरे अंडे को लेके चला जाए। तो इस तरीके से वो अपने चोच में पानी भर भर के ले जाती थी, दूर रेगिस्तान में डालती थी जाके। अब आप बताइए क्या अपने प्रयास से पानी को सुखा पाएगी, नहीं सुखा पाएगी। लेकिन इसी बीच गरुड़ जी की दृष्टि पड़ी कि अरे मेरा छोटा साथी कितना दुखी हो रहा है, तो वो आ गए और वो बोले कि देखो सागर वापस लौटाओ अंडे वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो जब गरुड़ जी आ गए तब तो सागर डर गया और उसको वापस कर दिया। उसी तरह जो हमारा कृष्ण प्रेम रूपी अंडा है, विषयों के सागर में खो गया है, उसमें डूब गया है। अब हमारी अपनी सामर्थ्य नहीं है, हम विषयी जीवों की अपनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने दम के ऊपर इन विषयों से पार पा जाए हमको, लेकिन प्रयास करते रहना है। तो इस प्रयास से क्या होगा, भगवान की कृपा, गरुण रूपी कृपा भगवान की हमारे पास आएगी, और जब कृपा आएगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान की कृपा तभी आती है जब हम प्रयास करते रहते हैं, अपना दीनता के ऊपर विश्वास रखना, भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास रखना, और साथ ही साथ निरंतर साधन में लगे रहना। जब निरंतर साधन में लगे रहेंगे तो हम इन विषयों से ऊपर उठ जाएंगे। कई बार लेकिन ऐसा स्थिति होती है कि डर जाते हैं हम, जब समस्याएं आती हैं, जब विषय परेशान करते हैं तब हृदय कांप जाता है, करें तो क्या करें। लेकिन साधक को चाहिए कि धैर्य ना खोए, वो साधन में लगे रहे, क्योंकि विजय हमारी निश्चित है। भगवान बोले हैं गीता में, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। दिक्कत तब होती है जब साधक डर जाता है, उसको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, होगा कैसे नहीं, हम 100 बार गिरेंगे फिर भी उठेंगे। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भगवान के सामने जाके क्रंदन करना चाहिए। आहा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता युता, आहा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता युता, करुणा करो ए बारो नरोत्तम दास को हे नाथे लिहो रंग पाया, तुम बिन के आछे अमारो, तुम बिन के आछे अमारो। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करें कि हे भगवान आपके बिना कौन मेरी मदद करेगा, सब कुछ छोड़ के तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। ओ किशोर जी इधर भी अगर हृदय जलेगा तो हम किधर जाएंगे, हम आपके शरण में हैं। तो इस प्रकार दैन्यता से जब भगवान से प्रार्थना करता है भक्त, तो उसके हृदय में एक सामर्थ्य आती है, एक विश्वास आता है भगवान की शरणागति के ऊपर, तो निश्चित विषयों से पार पा जाएगा। तो ये प्रत्येक साधक को ये मार्ग तय करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभुपाद जी इसमें अंत में परपट में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस बात की ओर सतर्क रहना होगा, तभी उनके इस आंदोलन का प्रचार कार्य सफल होगा। किस बात के ऊपर सतर्क रहना पड़ेगा, कि भगवत कि सब कुछ भगवान की तुष्टि के लिए हो, श्री भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करने में लगे रहते हैं, इस बात के ऊपर निश्चित रहना पड़ेगा। हम चैतन्य चेतावनी से कई बार कोट करते हैं कि भारत जन्म हेले जन्म तार जन्म सार्थक करी करो परोपकार, है ना, कि परोपकार करना चाहिए। लेकिन अधिकतर फोकस हमारा रहता है परोपकार के ऊपर, लेकिन परोपकार तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जन्म सार्थक नहीं करेंगे। जन्म सार्थक करने का अर्थ क्या है, जो हृदय में भोग की वांछा हो गई है, इंद्रियों की तृप्ति की वांछा हो गई है, इसको समाप्त करना, भगवान की भक्ति की वांछा करना। तो ये सब प्रत्येक साधक को इस मार्ग से गुजरना पड़ेगा, और यदि नहीं हुआ तो फिर प्रचार का कोई फायदा नहीं है। हम लोग भीड़ इकट्ठा कर लेंगे लेकिन उनमें भक्ति का कोई तत्व नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी इसी चीज के ऊपर बोल रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस बात की ओर सतर्क रहना होगा, तभी उनके इस आंदोलन का प्रचार कार्य सफल होगा। मैं जल्दी से एक लेटर प्रपा जी ने 1972 में रूपानुग प्रभु को एक लेटर लिखा है, बस इसको करके मैं विराम दूंगा। उसमें बोलते हैं, Now I want that we shall concentrate on making our devotees Krishna conscious and ourselves becoming Krishna conscious and not be so much concerned with expanding ourselves widely but without any spiritual content. Just like boiling the milk, it becomes thicker and sweeter. Now do like that, boil the milk. Prabhupada ji bol rahe hain, jaise doodh hai, jab usko garam karte hain to wo गाढ़ा होता है और मीठा भी हो जाता है। तो अभी हमको चाहिए कि विस्तार कार्य के ऊपर कम ध्यान दें, थोड़ा विशेष ध्यान दें कि अपनी भक्ति के स्तर को ऊपर बढ़ाया जाए। यदि ये नहीं हुआ तो भक्ति हम लोग ठीक है, भक्त लोग नए भक्त बन रहे हैं, लेकिन वही जब देखेंगे कि हमारे प्रभु जी ठनठन गोपाल हैं, इन्हीं के मिट्टी पलीद हो रखी है, तो वो लोग क्या फिर भक्ति छोड़ के भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपनी भक्ति के ऊपर भी ध्यान दें, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अवलोकन करें, अपनी दैन्यता पर विश्वास रखें और निरंतर साधन में लगे रहें। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आप लोग का? नहीं, प्रसाद का समय हो गया। नहीं, ठीक है, चलिए। शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे नितय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।